नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में, मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम का विषय आप जान चुके हैं, हमारी टेलीफोन लाइन खुल चुकी है 1811-7000 और 1811-7001। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील सूरज सिंह और टेलीफोन लाइन पर सीबीआई के पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह साहब मौजूद हैं। तो शुरुआत सूरज सिंह जी आपसे करते हैं, बहुत ही एक ऐसा विषय है जिसमें कि हम ये बार बार चिंता जताते हैं कि क्या हमारी न्यायिक प्रणाली में दिक्कत है, अभियोजन पक्ष में दिक्कत है, या जाँच एजेंसियाँ कहीं कुछ कमी कर रही हैं, लोग बरी हो जाते हैं, इतनी लंबी प्रक्रिया चलती है, चूक कहाँ हो रही है?
शर्मा जी, इसमें अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो कोई भी क्रिमिनल केस एफआईआर दर्ज होने से या कंप्लेंट केस है तो मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट दर्ज होने से प्रारंभ होता है। जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। सबसे बड़ी कमी तो यहाँ हो जाती है, क्योंकि या तो पुलिस हमारी ओवर बिजी है, उसके पास काम बहुत ज़्यादा है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, अप टू डेट उनके पास जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो नहीं है, क्रिमिनल ज़्यादातर उसमें ज़्यादा तेज हो जाते हैं। उसके बाद फिर जो है फिर जाता है ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी यही स्थिति है, ओवरवर्क्ड, अंडर पेड, इनकॉम्पिटेंट और करप्ट और ऑल ऑफ अबव। तो उसके मुकाबले में डिफेंस काउंसिल, जैसे एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर 15 से 20 केस एक दिन में करता है, जबकि जो डिफेंस काउंसिल एक या दो केस करते हैं, तो वो बेचारे बिजी बहुत ज्यादा होते हैं,
तैयारी नहीं कर पाते।
तीसरे फिर जो मजिस्ट्रेट है जिसका काम है इस सबको देखना, वो ओवर बिजी होता है, 60-70 केस होते हैं, कहां तक वो करे। और फिर उसके बाद अगर अपील में हम जाएं तो वहां सुप्रीम कोर्ट में भी 60-70 केस, सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो भी ये पोजीशन। तो जो नंबर्स है, शेयर क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है, और उसके मुकाबले में जो ये लोग हैं, चाहे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हों, चाहे वो आईओ हों जो इंस्पेक्शन ऑफिसर होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, या जजेज हों हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, सब जितने होने चाहिए उस मात्रा में बहुत कम है। तो ओवरबर्डन है।
सीधे जोगिंदर सिंह साहब के पास चलते हैं। जोगिंदर सिंह जी, बोफोर्स मामला जब हुआ था उस समय आप सीबीआई के निदेशक हुआ करते थे, बहुत ही प्रचलित मामला था, लेकिन उसकी परिणति यही हुई, डब्बा बंद हो गया, सबूत नहीं जुट पाए। हालांकि आप अपनी पूरी टीम के साथ खुद स्विट्जरलैंड गए, 40-40 बक्से उठा के लाए सबूत को, लेकिन वो सबूत अदालत ने स्वीकार नहीं किए।
नहीं, ये ऐसा था कि उस केस की जिसकी बफोर्स की बात कर रहे हैं, उसमें तो हर स्टेप पर ऑब्स्टेकल्स थी। पहले तो दिल्ली हाईकोर्ट ने उसको एफआईआर कैंसिल कर दिया, 2 साल लगे इसको रजिस्ट्रेट करने के लिए, ऑर्डर गलत है। उसके बाद जब चार्जशीट किया तो वो फिर अगेन हाईकोर्ट में चले गए। हाईकोर्ट ने कहा जी अब क्या इस जज के बारे में क्या कहा जाए कि आपने सीवीसी की परमिशन नहीं ली, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। फिर इसको आर्ग्यू करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में जाके, ये तो प्राइवेट आदमी है, इनमें गवर्नमेंट ऑफिसर तो कोई नहीं, सीवीसी का मतलब ही नहीं है। तो हाईकोर्ट ने स्ट्रिक पास की और जज साहब के पास दोबारा केस उनके पास किया, गवर्नमेंट बदल गई तो फिर वो उन्होंने परमिशन ही दिया आगे जाने के लिए,
यानी कि सरकारी पचड़ों में फंस गया ये केस।
अच्छा, दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहूंगा, जो मेरे मित्र सूरज सिंह जी ने कहा है कि 3,32,00,000 केसेस पेंडिंग है देश में, 61,081 सुप्रीम कोर्ट में है और 44,00,000 जो है वो है हाई कोर्ट और बाकी के जो है लोअर कोर्ट में है। मैं आपसे ये भी अर्ज करना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली मेरे पास, जो के सुरेंद्र सिंह जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक है। एट प्रेजेंट के हिसाब से हर सुप्रीम कोर्ट जज के पास, एक के पास 2,288 केसेज है, हाई कोर्ट में एक जज के पास 7,172 केसेज है और लोअर कोर्ट में 1,845 केसेज है, और इतने ऐड होते जाते हैं, निकल जाता है
कि ओवर बर्डन की वजह से ये दिक्कत हो रही है।
21,00,000 के करीब है
जी जी,
है ना, वो सेंक्शन,
मतलब ओवर बर्डन
लिखा है, कोई मानने को तैयार नहीं।
जी 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 जी,
दूसरे लाग हमारे इतने आउटडेटेड है कि अगर आप हर चीज के कहते हैं ऑनर्स आपके ऊपर है, आप समझे कि वो आतंकवादी है, हमला कर रहा है, कोई आदमी दरख्त के पीछे चुपके खड़ा हुआ देख के मैं कोर्ट में जाकर एविडेंस दूंगा। अब रिजल्ट ये है कि कई केसेस का फैसला 25-25 साल बाद आता है, क्योंकि हमारे मित्र जो वकील हैं वो भी एडजार्टमेंट मांगते हैं और ये एक खेल चलता रहता है। अब पॉइंट ये है कि इसको कैसे ठीक किया जाए।
जी जी, उस पे हम बाद में, जोगिंदर सिंह जी, जोगिंदर सिंह जी, कैसे ठीक किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, इस पर हम बाद में आएंगे। मैं यहाँ पर कार्यक्रम में एक श्रोता को शामिल करता हूँ जो कि अपनी राय रखना चाहते हैं। जी नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? हेलो
हेलो
जी, नाम बताएं और आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार,
जय हिंद। मैं सूरज मिश्रा बोल रहा हूँ, भटरा घाट विश्वमन बिहार से।
क्या नाम बताया आपने?
सूरज मिश्रा।
सूरज मिश्रा जी, अपनी राय रखिए।
मैं यही राय रखना चाहूंगा कि ये जो डिसीजन दिया गया ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है, इसमें दाल में कहीं ना कहीं काला है इसमें। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील साहब हैं, जज साहब हैं, सॉरी, उनसे मैं
जी माफ कीजिएगा, आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। एक दूसरे श्रोता के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं?
रामचंद्र गुजर सर बोल रहा हूँ, जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश से।
रामचंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है जी, अपनी राय रखें।
राय है सर, गरीबों के लिए भले कहा जाता है एक न्याय पालक, क्या जो निचले स्तर की सर मजिस्ट्रेट है उनके लिए क्या सर दूसरा साक्ष्य होता होगा, जो बड़े कोर्ट में बैठते हैं क्या उनके लिए अलग साक्ष्य होता होगा सर?
जी जी जी, रामचंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज सिंह जी ये बहुत पते की बात कह रहे हैं कि अमीरों के लिए साक्ष्य अलग होता है, बड़े लोगों के लिए साक्ष्य अलग होता है और छोटे लोगों के लिए साक्ष्य अलग होता है।
देखिए ऐसा है, लॉ ऑफ नेचर जो है वो लॉ ऑफ जंगल है। जंगल का क्या मतलब होता है? जो मजबूत है, जो पावरफुल है, जो छोटे को खा जाता है। कानून और सभ्यता, और उसका मतलब ये होता है कि किसी की कितनी भी ताकत हो सबके साथ बराबरी का, समानता का व्यवहार हो। तो ये एक आदर्श स्थिति है। यथार्थ में पैसे वाले की, ताकतवर की सुनाई ज़्यादा जल्दी होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 30 साल तक मर्डर अपील तक पेंडिंग है। अब 30 साल कोई बंदा अगर अंदर है और उसके बाद वो उसको बरी किया जाए तो उसको क्या आप सांत्वना देंगे कि भाई जो है आपको इंसाफ मिला? तो सिस्टम में एक फंडामेंटल कमजोरी है, जैसा कि मेरे मित्र डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी ने भी कहा कि हमारे कुछ लॉज आउटडेटेड हैं। जैसे एविडेंस के, एविडेंस में हमने देखा शर्मा जी जब हम इंग्लैंड में थे कि एक टिपिकल अंग्रेज जो है ना वो अटेंशन देता है, वो कितनी दूर खड़ा है, कितनी उस पर, तो उसके लिए तो एविडेंस चल जाता है। देहाती गांव के जो लोग हैं, बेशक उन्होंने मर्डर देखा हो लेकिन उनसे अगर प्रिसाइज आप सवाल पूछेंगे ना, आप घटना से कितनी दूर थे, तो एक कहेगा मैं जो है एक फरलांग दूर था, दूसरा कहेगा दो फरलांग, तीसरा कहेगा तीन, क्योंकि वो इतनी प्रिसाइज उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो हमारे लिहाज से, जो इंडिया के लिहाज से, एविडेंस इस तरह से माना चाहिए जो जहाँ यहाँ की सरकमस्टांसिस में विटनेसेस नहीं आते हैं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ की जो बात कही गई, तो जैसे फॉर एग्जांपल अब डावरी डेथ के केस में कानून बदल दिया गया कि 7 साल के अंदर अगर औरत मर जाती है तो उसके ससुराल वालों पर बर्डन है कि वो सिद्ध करें कि वो इनोसेंट है। तो इसी तरह के कई चीज़ों में होना चाहिए।
या आप कह रहे हैं कि जो हमारा जो साक्ष्य कानून है उसमें बड़ी भारी दिक्कत है।
जी
कार्यक्रम एक श्रोता को शामिल कर रहे हैं, उसके बाद जोगिंदर सिंह जी के पास चलेंगे। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं?
हेलो, मैं पठान खान बाड़मेर से बोल रहा हूं।
पठान खान जी, जी रखें अपनी राय।
मेरा ये रखता हूँ कि हमारे अपने भारत देश में गरीब और अमीर के बीच में कोर्ट में ये फैसला आ गया कि गरीब का कुछ सुनता ही नहीं है और अमीर तो कोर्ट में कुछ बात नहीं चलती।
तो ये जो
गरीब और अमीर के बीच में ये खाई है, गरीब और अमीर के बीच में ये खाई है कि गरीब का कुछ सुनते नहीं, कोर्ट नहीं सुनती, अमीर तो कितना भी जुर्म कर देता है वो कुछ कोर्ट करती नहीं उसका।
जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया जोगिंदर सिंह जी। दो हमारे श्रोता थे, दोनों ने एक ही बात दोहराई है, कहा कि अमीरों के लिए अलग कानून होता है और गरीबों की कोई सुनता नहीं है। दूसरी चीज़ जो सूरज सिंह जी कह रहे हैं कि परिस्थिति जो साक्ष्य कानून है उसमें बड़ी भारी दिक्कत है।
नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए ये जो सूरज सिंह जी ने कहा है बिल्कुल ठीक है। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, फॉर्डर स्कैम में मेन अक्यूज को 5 साल की जेल हुई, बड़े महंगी महंगे वकील लेके वो चले गए सुप्रीम कोर्ट और उसको उन्होंने बेल कह रहे आप बाहर रहेंगे जेल से जब तक आपकी अपील का फैसला नहीं, वो 20-25 साल नहीं होगा। तो ये जो कहा है नहीं श्रोता ने कि गरीब के लिए इंसाफ अलग, दूसरों के लिए अलग, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ज्यादा गलती नहीं है। जो कहने के लिए है क्योंकि डिपेंड करता है कि कैसे व्यू लिया जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है। अब पॉइंट ये है कि अब इसके अलावा हमारे पास जो है जुडिशियल स्ट्रेंथ इतनी कम है, 40% वैकेंसीज हैं हाई कोर्ट में, और हमें चाहिए, ये लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन थी 1987 में कि 50 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन, हमारे पास सेंक्शन है 18,000, एक्चुअल है 12,000 के करीब, और रिजल्ट आता है 9-9.5 आदमी जो है वैकेंसियां हैं पर मिलियन के हिसाब से, तो उसको डिले ही मिलेगी और क्या मिलेगा। इसके मुकाबले में मैं बताता हूँ कि कुछ और कंट्री को भी देख लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया में 58 जजेस हैं, कनाडा में 70 जजेस मिलियन, यूके में 100 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन, अमेरिका में 130, चाइना 170, जर्मनी 250, और हमारे जो हैं सिर्फ 31 जजेस हैं, अमेरिका में 3600 फेडरल जजेस हैं, किसी को वाशिंगटन में आने की जरूरत नहीं, वहीं की स्टेट में फैसला,
इसीलिए शायद जल्दी वहां पर फैसले होते हैं। एक श्रोता को और शामिल कर लेते हैं जी, नाम बताएं। जी नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं?
नमस्कार सर,
माफ कीजिएगा आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी हाँ, जी जी हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, दूसरे श्रोता के पास चलते हैं। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं?
हेलो सर
जी, नमस्कार,
आत्मा प्रसाद चौहान एडवोकेट, जिला बस्ती उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
आत्मा प्रकाश चौहान जी, आप खुद एडवोकेट हैं जी, हमारे साथ सूरज सिंह जी मौजूद हैं और पूर्व सीबीआई डायरेक्टर भी मौजूद हैं जोगिंदर सिंह साहब जी, अपनी राय रखिए आप।
जी सर, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हैं और जोगिंदर साहब, दोनों ने सही बातें कही हैं, उसमें हम एक बात और जोड़ना चाहेंगे, पुलिस पे हमारी जो है पुलिस उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, बिना पैसा लिए कोई FIR नहीं लिखते हैं तो ये न्याय कैसे करेंगे, जो पैसे वाला होता है उसके पक्ष में ये लोग जांच करते हैं और उसको ऐसा कमी निकाल देते हैं, उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था कर देते हैं जांच में, इन्वेस्टिगेशन में, हाँ। कि वो अपराधी छूट जाता है।
ठीक है, तो आप जो है वो पुलिस की जांच को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जांच की
जी, सर पुलिस की जांच ही ऐसी कमी हो गई थी, उसमें जो गवाह उसमें कार के अंदर था सलमान खान के, उसका बयान तक उन्होंने नहीं लिखा और उसको तलब ही नहीं किया, वो कहाँ आखिर गायब हो गया, कहाँ लापता हो गया, पुलिस को उसको खोज करके लाना चाहिए था, उसका एविडेंस कराना चाहिए था।
रविंद्र पाटिल की बात कर रहे हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो एडवोकेट साहब हैं ये एक और इसमें एंगल दे रहे हैं कि जो पुलिस की जांच है, और जो हमारा मुद्दा भी यही है, जांच प्रक्रिया में पुलिस काम ठीक नहीं कर पा रही है, या वो भी दबाव में।
सबसे पहले जो क्रिमिनल केस स्टार्ट होता है वो होता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन से, वो आधार है, उस आधार में अगर कमी रह जाए तो बाद में वो कमी पूरी नहीं हो सकती। चश्मदीद गवाह भी वहीं बनते हैं, एविडेंस भी वहीं बनता है, जैसे आरशी के केस में,
हाँ,
शुरू में बॉडी को कोडोन भी नहीं किया गया, तो कभी कोई आ रहा है, निशान किसके पड़ रहे हैं, और यहाँ पुलिस पे जो ये आरोप लगा रहे हैं, बहुत से केसेस में ईमानदार भी हैं, लेकिन ज़्यादातर में पुलिस पर ये शिकायत है कि वो पैसा लेके इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ कर देते हैं, और वहाँ अगर कमी रह गई तो बुनियाद में कमी हो गई, और बुनियाद में कमी है तो बिल्डिंग तो गिरेगी
नहीं, तो ये जो भाई जो साक्ष्य जो सबूत है, सबूत बदल जाते हैं, बयान बदल जाते हैं, लेकिन मेरा तर्क ये है कि भाई अगर 20 साल तक एक ही कोई बयान अपना, वो कैसे उसको याद रहेगा कि उसने 15 साल पहले क्या कहा था।
निश्चित रूपेण उसका फर्क पड़ेगा, साथ ही ये भी पड़ेगा कि 20 साल में जो है, हम लोग जो क्रॉस एग्जामिनेशन वाले डिफेंस काउंसिल जो होते हैं उनका यही होता है कि कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएं, और क्योंकि ट्रेंड लोग होते हैं,
हाँ,
तो अगर 20 साल भी ना हो, 5 साल भी हो जाए, तो कई चीजें, जैसे मैं ही आपसे पूछूं कि आप पिछले 6 दिनों से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्या क्या खाया जरा बताइए, अब इस पे तो कोई संदेह नहीं कि आप जब तक व्रत पे ना बैठे हो अन्ना की तरह, तो नाश्ता तो कर ही रहे हैं,
हाँ, तो
लेकिन अगर रोज आपसे पूछा जाए, बशर्ते कि आप एक ही चीज रोज ना खाते हो, तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम पूछते हैं विटनेस से, अच्छा आज से 4 साल पहले क्या हुआ, तुम कहाँ थे, ये सारी चीजें हैं, उसमें बढ़िया जज को देखना चाहिए भाई टोटैलिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस को देख के किस तरह से उनको लगता है, अगर आदमी मरा है तो किसी ने तो मारा है,
हाँ,
लेकिन
कई का कुछ नहीं हुआ। हाशिमपुरा का जिक्र करें, सारे के सारे 30 साल बाद सब बरी हो गए
जी,
कहीं तो, कोई नहीं कुछ नहीं,
तो इसलिए इसका एक तरीका है वो ये है कि एविडेंस तुरंत जो है, अगर 161 का बयान होता है पुलिस के सामने, लेकिन 164 का बयान होता है मैजिस्ट्रेट के सामने, अगर वो करा दिया जाए तो कम से कम उसी समय वो बात बंद हो सकती है, क्योंकि वो एविडेंस माना जाता है,
एविडेंस माना जाता है। एक श्रोता को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। जी नाम बताएं और क्या कहां से बोल रहे हैं आप? माफ कीजिएगा, आपकी भी जो टेलीफोन लाइन है बहुत ही खराब है जी। एक और श्रोता से संपर्क साधते हैं जी, नाम बताएं।
हाँ हेलो सर, मोहम्मद सईम बोल रहे हैं।
मोहम्मद सईम साहब
पीपलसाना जिला मुरादाबाद यूपी,
मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं जी। राय रखिए आप।
देखिए जैसी न्याय व्यवस्था भारत में चल रही है सर, हम आपको बता दें, जैसे हम देखते हैं कि अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ था, उसमें 5 लोग ऐसे थे जो 13 साल तक जेल में रहे और उसके बाद उन्होंने बरी कर दिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ठीक है सर, ऐसे हम देखते हैं कि कई केसों में कि जो लोग जहाँ फर्जी मुठभेड़ है, शराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ में तो अमित शाह को मतलब ट्रायल शुरू होने से पहले ही बरी कर दिया गया।
जमानत दी गई
की कमी है
जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया।
कहाँ जा रहे हैं सर?
हाँ कहाँ जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जोगिंदर सिंह जी, ये जो फैसले पलटते हैं जी, निचली अदालत का फैसला जो है जब आता है और उसके बाद बड़ी अदालत में एकदम फैसला बदल जाता है, यहाँ पर भी सबूतों का मामला है?
नहीं, वो देखिए इसमें मैं चीफ जस्टिस दत्तू साहब को कोट करूँगा जो रिटायर हो गए 3 दिसंबर को।
हाँ,
उन्होंने कहा था ऑल जस्टिस इज जज सेंट्रिक, जज के मन में क्या आता है वो करेगा, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे ट्रेडिशन बन गई है कि एक का फैसला दूसरा उल्टा करेगा, दूसरे का तीसरा करेगा। इसके अगेंस्ट है यूएस से कोई इंटरफियर नहीं करता, हमारे तो यह है एक अपील से दूसरी अपील। अब देखिए मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई गैर नहीं है। यकूब मलिक के लिए 1 बजे उठाया गया, 8 बार वो अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ एक ही केस था जो है। अब चूंकि आपने लाभ बनाया है, जब तक छूटते नहीं जेल से बात करेगी तो क्या करेंगे इन चीजों के लिए। और दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, पुलिस की बात कही, मैं इसमें कोई दूसरी राय नहीं, मैं भी डिस्ट्रिक्ट सुप्रीम का पुलिस रहा हूँ बीदर में
जी, जी,
मेरा
जी।
साथ मैसूर उस टाइम अब कर्नाटका है, वहां भी मैंने कई आदमियों को पकड़ के डिसमिस किया था इन चीजों के लिए। पर मैं इसमें सरकार को गिल्टी मानता हूँ। मैं जब नया एसपी चार्ज लिया तो मैंने देखा कि 90% पुलिसमैन को कोई ला का मालूम नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं थी कि क्या क्या कानून है क्या मैंने नहीं। तो मैंने डीजी को चिट्ठी लिखी कि ये साहब हमारे तो ट्रेंड ही नहीं है। उन्होंने आगे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज भेजी, वो कहते जी आपको 2 वैकेंसियां मिलेंगी, एक ही ट्रेनिंग कॉलेज है जैसे यूपी में है, मुरादाबाद में ये रेलवे का एक ही है यहाँ पे। मैं कह हिसाब से तो हम सब मर जाएंगे 200 साल में जो है।
नहीं तो मतलब देखिए आपने तो उस लोगों की ट्रेनिंग करवा दी है, मुद्दा उठा दिया, लेकिन बाकी कितने ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो लोगों की ट्रेनिंग करवाते हैं
यूपी में?
तो
खासतौर पे इनकी सेंक्शन स्ट्रेंथ है 360,000, एक्चुअल वैकेंसी है 1,00,000 जो भरी हुई है, 1,20,000 पैसे लेके करते हैं लोग, इसमें कौन सी बात है। 22,000 आदमियों की एक चीफ मिनिस्टर के समय में जो हुआ,
मतलब प्रशिक्षण नहीं है, लोगों को मालूम ही नहीं है।
उसको अपसेट कर दिया, उन्होंने कहा नहीं ये गलत हुआ है
जी,
जी कहते कोर्ट भी अपनी लिमिट में रहते हैं।
मतलब आप मोटे तौर पर ये कह रहे हैं कि प्रशिक्षण नहीं है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि कैसे एविडेंस लेना है, कैसे जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। एक श्रोता को शामिल कर लेते हैं यहीं पर जी, नाम बताएं।
जी मेरा नाम हुआ कुमार धनेंद्र सिंह, औरंगाबाद बिहार में एडवोकेट हूँ।
अच्छा आप भी एडवोकेट हैं, क्या बात है, आज कार्यक्रम में एडवोकेट बहुत आ रहे हैं जी।
स्थिति यहाँ ऐसी है सर कि FIR तो लिखती ही है, पुलिस लिखती है, उसको उस पर कोई खास शिकायत नहीं लिखती, लेकिन सेक्शन सही नहीं लगाते, एक शिकायत तो है पुलिस पर।
सेक्शन तो मालूम होंगे तब लगाएंगे ना
सर, उनको तो मालूम है ना, जो भी हर दिन सेक्शन ही लिख रहे हैं पुलिस वाले, उनको तो इतनी जानकारी है ही। और साथ ही कोर्ट की स्थिति है कि जजेज की संख्या तो वहाँ पर यानी कि काम चलाऊ है, लेकिन मजिस्ट्रेट की संख्या नहीं है सर,
मजिस्ट्रेट की संख्या नहीं है, यानी कि लोकल स्तर से ही जी। बहुत बहुत शुक्रिया। दो चीजें कही इन्होंने सूरज सिंह जी कि भैया सेक्शन ही गलत लगा रहे हो आप, या तो वो जानबूझ के कर रहे हैं
जी,
और या फिर वो अज्ञानी है।
देखिए अज्ञानी और भ्रष्टाचारी दोनों ही हैं, कईयों में जान पता है लेकिन जानबूझ के उससे ज्यादा या उससे कम वाला लगा रहे हैं क्योंकि
बच जाए
पैसे दे दिए, या कई जगह ज्ञान ही नहीं है कि कौन सा सेक्शन लगेगा। और कई जगह जो बेसिक न्यायिक कल्चर होती है ना, एक सेंस ऑफ फेयरनेस और जस्टिस, जैसे अमेरिका में हमने देखी, हम अमेरिकन पुलिस में एडवाइजर थे, तो वहाँ जो है इस तरह से मनुष्य को ट्रीट किया जाता है बड़े रेस्पेक्ट के साथ जब तक वो गिल्टी सिद्ध ना हो जाए। यहाँ तो जैसे ही FIR दर्ज हो गई आपने उसको गिल्टी मान लिया। तो जो पूरी कल्चर है ना ह्यूमन राइट्स के रेस्पेक्ट की वो भी नहीं है। पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाती है किस लिए? तो ये सारी चीज़ें जो है ना जो अभी चला आ रहा है अंग्रेजों के टाइम का अथॉरिटी ने रूल वही मेंटेलिटी है।
आगे आगे चर्चा ये करेंगे कि क्यों हम इस चीज़ों को दिक्कत है और क्यों हम इनको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। श्रोता को शामिल करते हैं। जी नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं?
जी हेलो।
जी हाँ नाम बताएं।
जी मैं नंद किशोर सिंह बोल रहा हूँ, रामपट्टी डिस्ट्रिक्ट मधुबनी बिहार से।
जी रामकिशन जी ना?
मैं नंद किशोर सिंह।
नंद किशोर जी, हाँ नंद किशोर जी बताइए।
जी मेरा कहना है कि भारत का जो कानून व्यवस्था है बहुत ही बिगड़ा हुआ है, क्योंकि आप केस अगर कोई पैसा वाला अगर गलती करता है तो FIR दर्ज गरीब लोग करने जाता है, तो देखते हैं हम ग्रामीण भेद में कि पैसा देकर उस केस को दबा दिया जाता है। और वहां पे आप कोर्ट में जाइएगा, कोर्ट में अगर जाएगा तो जज बोलेगा वहां पे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, सबूत के आधार पे ही हम काम कर सकते हैं।
कानून अंधा होता है।
जी
कानून अंधा होता है इसलिए सबूत ही देखता है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज सिंह जी। हमने देखिए दो तीन चीज़ें सामने आई कि बहुत ही ओवरलोडेड है हमारी न्यायपालिका, इतना समय नहीं है इतने केस समझने के लिए। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं उनके पास लगातार अपील में उनको जाना है, डिफेंड जो कर रहा है बंदा वो एक या दो केस कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं। लोग गलत धाराएं भी लगा रहे हैं, कुछ जानबूझ के कर रहे हैं, भ्रष्टाचार भी है, ये सब कुछ ठीक है। जो रिकमेंडेशन है, जो कानून की लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है, वो क्यों नहीं हो रही?
देखिए उसके लिए विल पावर चाहिए सबसे पहले है,
और वो सरकार का काम है।
वो सरकार का काम है सबसे पहले तो ये कि सुधार के लिए, सुधार किसको फायदा करेगा? पॉलिटिशियन जो है, जैसे पहले अंग्रेज पावर में थे उनकी जगह हमारे यहाँ पॉलिटिशियन आ गए,
हाँ।
तो पुलिस तंत्र उनके लिए एक तरह से पावर में अगर आ जाए तो उनके लिए सुविधाजनक सिद्ध होता है, क्योंकि कल वो अंग्रेजों को सलाम मारते थे, अब पॉलिटिशियन को मारते हैं। तो कोई उनके लिए मोटिवेशन नहीं है कि भाई उसमें सुधार किया जाए, तो सारा फोकस पॉलिटिशियन का ये रहता है कि कैसे पावर में आ जाएं ताकि पुलिस तंत्र को, दूसरे तंत्र को अपने लिए इस्तेमाल करें, अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करें।
हाँ।
तो जो सिविक वर्च्यू होती है ना,
हाँ।
सिविक वर्च्यू होती है अपने अलावा दूसरे के, समाज के सिटीजन के रूप में सोचना, वो चीज़ हमारे यहाँ बहुत कमजोर है।
जी जोगिंदर सिंह जी आपके पास आ रहे हैं, ये भाई आप बता रहे हैं कि इतने इतने पद खाली हैं, सरकार जो है, सरकार का काम है कि न्यायपालिका को दुरुस्त करे, और हर पेज, बहुत सारे पेज हैं, हर स्टेज पे पेज हैं इसमें, तो ये सुधार होता क्यों नहीं है? पॉलिटिकल विल की कमी है सूरज सिंह जी कह रहे हैं।
ऐसा है कि उन चीज़ों के लिए कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है।
तो जजेस की नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही
हैं? सुधार करने के लिए या पुलिस में सुधार करने के लिए, तो वो तो ऐसी बातें करेंगे कि हम आपको ये आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे, आपकी सड़कें बना देंगे, नहरें बना देंगे। तो ये बहाना भी है और पैसे बनाने का भी बहाना है। ये जो हमारे जैसे जैसे जैसा देश वैसा देश, वही हिसाब है, उल्टा समझ लीजिए। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कुछ पॉलिटिशियन को छोड़ के जो कोई काम कर सकते हैं करते हैं, बाकी 90% जो है, मैं पढ़ रहा था इसमें से बिहार में अभी इलेक्शन हुआ है तो सब्सटेंशियल परसेंटेज वोट 40% या 54% मुझे एग्जैक्ट नहीं है, जो इलेक्ट हुए MLA वो क्रिमिनल है। थोड़ा कसूर जनता का भी है, सरकार का नहीं है। हम जाते हैं जातिवाद पे, ये हमारी जाति का, हम इसको चुन रहे।
मतलब आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो इलेक्टोरल प्रोसेस पर भी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं।
मैं देखिए ऐसा सच्चाई तो यही है, उसने जब बिहार के एक नेता ने कहा था कोई भी यादव किसी
हमारे जो लोकतंत्र है जिस तरह से काम कर रहा है उस पर भी इन चीजों को लेकर एक सवाल है। जोगिंदर सिंह जी समय हमारे पास, समय बहुत कम है और हम कार्यक्रम के अंत की तरफ आ गए हैं। मैं आखिरी टिप्पणी सूरज सिंह जी 30 सेकंड में, ये तंत्र जो है सुधरेगा या नहीं सुधरेगा?
निश्चित रूप से सुधरेगा। सबसे पहले तो एक अवेयरनेस हुई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं था, अब राइट टू इन्फॉर्मेशन आने से जहां जहां लाइट आती है वहां वहां अपराध कम होते हैं।
हमें जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाई देता है, स्वतः संज्ञान लेती हैं अदालतें, लेकिन ये जो पचड़े हैं ये नहीं सुधरते हैं।
समय लगेगा लेकिन सुधार हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन समय जरूर लगेगा।